ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सदा खुश रहो। और क्या करो? मुस्कुराते रहो। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे? अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे? अच्छा ही होगा, फिकर क्यों करें? हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। और कैसे खुश रहेंगे? चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया? चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया? खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ये खुशी कहाँ मिलेगी? यादों में सच्ची, यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी। और ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान, ये वरदान, ये भगवान का कि नाचो खुशी में और नचाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। सब खुश हैं? सब खुश हैं? खुश हैं या बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं या खुश हैं? बहुत खुश हैं। सर्वप्रथम बाप दादा के महावाक्यों को एक बार पुनर्स्मरण कर लेते हैं। प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चे ऊंच बनना है तो हर रोज अपना पोता मेल देखो। क्या देखना है? कि कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती? ये आंखें धोखेबाज हैं, बाबा तो कह रहे हैं ये आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे अपनी संभाल करनी है। प्रश्न है कि सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कहीं कुछ देखा तो छिपा कर खा लेंगे, हैं? छिपाना माना चोरी करना। चोरी रूपी माया बहुतों को एक तो नाक से पकड़ती है और दूसरा दोनों से पकड़ लेती है, हैं? और इससे बचने का साधन बाबा कहते हैं, क्या बचने का साधन है? कि जब बुद्धि कहीं जाए तो क्या करना है? जब कहीं बुद्धि जाए तो खुद को क्या करना? सजा देनी और कर्मेंद्रियों से, अपनी बुरी आदतों से अगर छूटना है तो क्या करना है? खुद को फटकार लगाना है। फटकार लगाते हैं अपने को? लगाते हैं फटकार? किसको फटकार लगाते हैं? अपने मन को, अपने आप को। कि मैंने ये क्यों करता हूं। आए मन, तू धोखा क्यों देता है? हैं, तुमने तो सब कुछ बिगाड़ दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। कुछ करना है तो भी कर ले, अब ना किया तो क्या होगा? क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए ड्रामा में नूंद हो जाएगा, कहीं खाली ना रह जाए। तो बाबा कहते हैं धारणा सार में कि सेंसेबल बन, अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? क्या जांच करनी है? कहीं आंखें धोखा तो नहीं देती हैं? बैठे यहां पर हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पता भी नहीं है कि धोखा भी देती हैं। हम खुली छूट देते हैं, जो चाहे देखते रहो, जिधर चाहे देखते जाओ, है ना? इनके ऊपर अंकुश चाहिए। तो चेक करना है, आंखें कोई धोखा तो नहीं देती? कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं करना, उल्टा कर्म नहीं करना है, और याद के बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना है। किससे? याद के बल से। दूसरी बात बाबा कहते हैं इसमें, इस समय क्या है? ये समय बहुत कीमती है, इसमें ऊंच कमाई करनी है। ये कमाई जमा करने का, सच्ची कमाई करने का यही समय है। इसलिए इस समय पर कमाई करनी है। दूसरी बात बाबा कहते, पीछे आते भी पुरुषार्थ से गैलप करना है, मेकअप करना है। पीछे आते ना अभी भाई बहने, कितने पीछे आ रहे हैं जिन्होंने दादियों को नहीं देखा। अभी अभी तो दादियां थी, है नहीं? कितनी दादियों को नहीं देखे, तो अभी पीछे आए हैं। तो अपने मन पे होना चाहिए कि मैं बहुत पीछे आया हूं, मुझे बहुत कुछ करना है, किसी को देखना नहीं, लगन लगाना है। तो पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप करना है, और ये विकर्म विनाश करने का समय है। इसलिए कोई विकर्म करना है, विकर्म करना है। आप करते थोड़े हो जाता है तो क्या करेंगे, है ना? कंट्रोल, नियंत्रण, स्वयं के ऊपर नियंत्रण हो। तो बाबा कहते हैं नियंत्रण करना है। वरदान क्या है? बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक, मैं बालक सो मालिक हूं। बालक बनना माना सब कुछ प्राप्त करना। जो बाबा के बालक बन गए माना प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए। तो बाबा कहते हैं बालक सो मालिक बन जाए, सब प्राप्तियां करें। स्लोगन क्या है? स्लोगन क्या है? हाँ, बैठ जाए, बैठे, बोलिए। स्लोगन क्या है? प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो क्या करना है? कुछ करना और है? सदा प्रसन्न रहना है। तो सदा प्रसन्न है, सब प्रसन्न है भाई? एक बार और हाथ उठाएं, सब प्रसन्न है, खुश हैं? खुशी का आधार क्या है? सदा खुश रहना है। यदि हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान संगम युग के संगम युगी परिवार को प्राप्त करने वाले, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति करने वाले, सहज योगी राजयोगी, बेहद के वैरागी, विश्व सेवाधारी और विश्व राज्य अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप भगवान के बच्चे, यदि हम खुश न रहे तो कोई और खुश होगा? कौन खुश होगा? कोई होगा? सब खुश, खुश होंगे कोई? हम सबसे खुश हैं, हम खुश नसीब हैं, हम भाग्यवान हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो सदा खुश रहना। खुश तो हैं, बाबा का कोई भी बच्चा नाराज तो नहीं होता है? होता है कोई नाराज? होता तो है, बताए या न बताए हैं, नाराजगी भी होती है। चेहरे देखो दिन भर में तो हमारे चेहरे कई रंग बदलते हैं, अभी तो देखो बहुत खुश हैं और थोड़ी देर के बाद किसी ने कुछ कह दिया तो रंग बदल जाता है। दुनिया में तो कहते हैं एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखना तो गौर से देखना, हर चेहरे पर एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और। दुनिया की बात ही मत पूछो। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे अपने आप को चेक करें। आज आप सबको संकल्प करना है, किस बात का संकल्प करना है, किस बात का, सदा खुश रहने का। सदा खुश रहने का संकल्प करेंगे, है ना, संकल्प करेंगे सदा खुश रहेंगे। संकल्प भी आप कर लेंगे, हाथ भी उठा लेंगे, उठवाएंगे तो हाथ उठा लेंगे, लेकिन कैसे सदा खुश रहें उसकी युक्ति भी कुछ बताते हैं आपको। तो पहले बोलिए कि सब कोई सदा खुश रहेंगे, सब खुश रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं। हमारी दीदी नहीं उठा रही है, हमारी दीदी नहीं उठा रही, सोचती है कि हम तो खुश रहते ही हैं। लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ, लंबा हाथ उठाइए, हाँ बाबा भी देख रहा है। लंबा हाथ उठाए, नीचे नहीं, वह देखो दोनों हाथ उठा रहे हैं, बधाई है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करें, बहुत बहुत अभिनंदन। इस दुनिया में सदा खुश रहना बहुत बड़ी तपस्या है। दुनिया वाले तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कहते हैं यहां तो अभी पल में अभी गिरना और संभलना है, अभी चढ़ना है अभी गिरना है, और यहां तो होता रहता है, सदा खुश कैसे रह सकते हैं। सदा खुश रहने को भी उछलावा मानते हैं कि दुनिया दुख रहे, पड़ोसी हमारा दुखी रहे और मैं मुस्कुराता रहूं, तो जानबूझ के उनके लिए भी चिंता ओढ़ते हैं लोग। सदा खुश रहेंगे तो और भी खुश हो जाएंगे ये नहीं जानते हैं लोग। तो आज हम सब कुछ प्रैक्टिकल कुछ बना लेते हैं प्लान, निरंतर खुश रहें। निरंतर खुश रहना ये ब्राह्मण जीवन का सौंदर्य है, ये ब्राह्मण जीवन की खूबसूरती है। निरंतर खुश रहना ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और निरंतर खुश रहना एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी है, तपस्या भी है। खुश तो रहेंगे लेकिन विपरीत परिस्थितियों में खुश रहें, कुछ भी हो जाए लेकिन मुस्कुराते रहें। बाहर से मुस्कुराहट नहीं, बाहर से मुस्कुराएंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या है, वो खुश नहीं, बल्कि अंदर से खुश रहें, निरंतर खुश रहें। सदा खुश रहना बहुत बड़ी सेवा भी है, जो सदा खुश रहेंगे वो बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। खुशी जैसे कोई खुराक नहीं, बाबा कहते हैं कि खुशी की खुराक वैसे है नहीं, कितना भी बीमारी हो शरीर छूटने को आए तो भी मुस्कुराते रहें, माना रोए नहीं, हाय हाय न करें, चिल्लाएं नहीं। मुस्कुराने का मतलब है अंदर से भी एक रस स्थिति रहे। हम सब जानते हैं मातेश्वरी मम्मा सरस्वती, अंतिम समय 24 जून का दिन शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने से पहले बाबा मम्मा के हाथ में अंगूर रखते थे और मम्मा ने अंगूर भी दिया, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आई। सोचो जिसको पता हो अंतिम पल है, अब थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं रहना है, पता था, लेकिन उस समय पर शरीर भी नहीं चलता है लेकिन चेहरे पर जरा भी चिंता की न गम की न कष्ट की न पीड़ा की कहीं रेख भी नहीं थी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की। क्या कितना सोचिए, कितना आत्मिक बल, कितना ईश्वरीय बल, कितना अलौकिक ताकत थी। ऐसा हो सकता है? बाहर दुनिया में बहुत मुश्किल हो। एक बार दादी गुलजार सुनाती थी कि हमने देखा कि रात को मम्मा को बड़ी तकलीफ होती थी, आवाज भी आती थी, तो हमने मम्मा से पूछा, मम्मा दिन में तो आपको पता ही नहीं लगता है किसी को कि आपको कुछ हुआ भी है, आप तो एकदम एकरस स्थिति रहती हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, आप तो हमेशा दिखाई नहीं पड़ते, उसमें रहती हैं एकरस स्थिति में, तो ये कैसे रहती हैं? तो कहते हैं जब कोई मिलने आएगा तो थोड़े मुझे कुछ कहना है, थोड़े अपने अपनी स्थिति बिगाड़नी। तो मैं कहती है इसका मतलब आपके साथ कोई न कोई सामने आता रहे, कहा मुट्ठी ऐसा थोड़े होगा है ना मम्मा, रात का मामला है, जब मम्मा लेट रही है कितनी पीड़ा रहेगी। क्या आप फॉलो फादर फॉलो मदर कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा, एक बार अभिनंदन कीजिए अपना, बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में ऐसी विपरीत स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी जिनमें हमारी एक रस स्थिति रहे, एक रस माना सदा प्रसन्न चित्त रहे, अंदर की प्रसन्नता, दांत दिखाने वाली नहीं, निरंतर प्रसन्न चित्त रहे। और उसके लिए आज हम सब कोई संकल्प लेते हैं, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। पहली बात नोट कर लें, क्या है? पहली बात है ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहें। जितने ज्ञान का शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र अपने पास रखा है, आने वाले समय में कितनी भी विपरीत स्थितियां रहेंगी, जो ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे वही आनंदमय स्थिति में रहेंगे। तो पहला है ज्ञान का शक्तिशाली चिंतन और मनन। बाबा इसको क्या उदाहरण देते हैं? जैसे सागर में, क्षीर सागर में विष्णु सोए हैं, लेटे हैं, और लेटे कौन सी मुद्रा में? मगन मुद्रा में, चिंतन के मुद्रा में, चिंता की मुद्रा नहीं, चिंतन के मुद्रा में। ऐसे ही भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है, सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में, हैं? उमंगे भरते हैं ये प्राणों में, क्या बात। तो इस तरह सदा प्रसन्नचित वो रह सकता है जिसके पास ज्ञान का शक्तिशाली चिंतन, जो शक्तिशाली मनन चिंतन करते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आज से बाबा की मुरली को ही अपने दिनचर्या में जितना समय मिले बार 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 पढ़ना। एक बार में याद नहीं होता है, बार बार उसको पढ़ें और उसको याद करने की कोशिश करें। पहले थोड़ी सी याद कर लें, पहले स्लोगन याद रहे, वरदान याद रहे, हेडिंग याद रहे, क्वेश्चन आंसर भी धीरे धीरे याद रहे, मुरली के मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट करें। मुरली की पॉइंट्स तब याद रहेगी जब बार बार पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और व्यवहार मिलाएं। जब हम किसी न किसी को ज्ञान की बातें सुना दें, जब तक किसी को सुनाते नहीं हैं तब तक वो याद नहीं रहता है, कितना भी याद कर लीजिए। जब किसी को यूज नहीं करेंगे, सुनाएंगे नहीं, तो दो चार दिन याद करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाया करेंगे। इसलिए जितना भी हो उसको सुनाएं। हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? सवेरे सवेरे उठते हैं, मैं तो एक दिन पहले ही ज्ञान की पूरी कविता बना देता हूं, फिर उसके ऑडियो भी बना देता हूं, बहुतों को भेज भी देता हूं, और फिर गीत भी लिखता हूं, उसी को मनन करता हूं, उस पर क्लास के भी चिंतन होता है, उसी से लेन देन भी करता हूं, और सवेरे सवेरे 2-3 को तो फोन पे अमृत वेले तक याद कर लेता हूं और मुंह जबानी याद करके उसको फोन पे सुना देता हूं। वो लोग बैठे होते हैं कि मधुबन से भाई जी कुछ सुनाए और हम इसलिए सुनाते कि मुझे याद आ जाए, हमारा लाभ अपना हो, हम अपना लाभ देखते हैं। तो याद किए होते हैं तो और याद आ जाता है। फिर सेवाधारियों की मुरली चलती है सवेरे, कुछ वो भी सुन लेता हूं। फिर बाद में 7 बजे वाली मुरली भी सुनता हूं। फिर 7 बजे वाली मुरली के बाद 1-2 भाई हैं, उनसे फोन पर पूरी बात का, पूरी मुरली के पॉइंट्स का, मेन पॉइंट्स का आपस में लेन देन करता हूं। और जब उसी चिंतन हो, उसी पर गीत वगैरह का निर्माण हो, तो कितना याद आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपनी दिनचर्या में सवेरे भोजन पे बैठे हैं, भोजन करने के लिए आपस में बात करने के बजाय सामने मुरली के पॉइंट रख दें, वो भूल जाएगी, फिर रख दो, फिर याद करो, फिर चिंतन करो, फिर भोजन करो, करते जाओ, मुरली के पॉइंट हो, फिर याद करो। जब तक आप मुरली को, बाबा के मुरली को, बाबा के ज्ञान को अपना ओढ़ना, बिछौना, खाना पीना सर्वस्व नहीं बना लेते, सुबह से शाम तक उसमें मगन नहीं होते, बाबा की मुरलियां याद नहीं रहती, पॉइंट्स याद नहीं रहते, भूल जाते, और सारा दिन शाम तक देखो तो पता ही नहीं लगता आज मुरली क्या थी। कभी कभी तो कईयों से पूछो तो उनको याद करते हैं आज अव्यक्त मुरली थी कि साकार मुरली थी, यहां तक भी याद करते हैं। इतना नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ईश्वरीय जीवन में शक्तिशाली बनना है तो ज्ञान की मुरली को अपना आधार बना लेना है। किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा जब योग योग ही सब कुछ है, बच्चे मुझे निरंतर याद करो, मुझे मेरी याद में रहो, तो बाबा इतना मुरली पढ़ने की, इनको ज्ञान सुनाने की, उनको सुनाने की, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो बाबा ने कहा, बच्चे आगे चल करके विपरीत स्थितियों में, परिस्थितियों में जब तुम्हारा योग लगेगा नहीं या योग टूट जाएगा, तो शक्तिशाली ज्ञान का चिंतन तुम्हारे योग को जोड़ेगा। घटनाएं घटेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि तो ज्ञान में चले थे तो लगा था कि ये है वो है, अब तो कोई हमको पहचानता ही नहीं। ज्ञानी परिवार भी, ईश्वरीय परिवार तो हमारा परिवार था, यहां तो अब तो कोई पहचानता ही नहीं। ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कोई अपना नहीं होगा, सबसे निराधार बनना होगा। विपरीत स्थितियां आएंगी जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, उसमें भी सशक्त बनना, उसका आधार एक है, वो है बाबा का शक्तिशाली ज्ञान का मनन चिंतन। जिसने शक्तिशाली मनन किया वही विपरीत परिस्थितियों में, पेपर्स में भी, जो बाबा ने पेपर्स बताए उनमें भी एक रस अवस्था बना सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, ज्ञानी ही योगी है, ज्ञानी ही त्यागी है, ज्ञानी ही तपस्वी है, ज्ञानी ही योगी है और ज्ञानी ही सर्व गुण मूर्त है। ज्ञान होना ठीक है। अभी क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे मुरली को मनन करें, दिन भर में जहां भी व्यर्थ की थोड़ी गुंजाइश हो वहीं पर मुरली की पॉइंट रख दीजिए। आजकल तो मुरली सबके पास है, पहले के जमाने में बड़ा मुश्किल था, मिलता ही नहीं था। पॉइंट नोट कर लिया तो नोट कर लिया, वही याद होता था। ठीक है ना, अब आपको ये करना है। अब दिनचर्या में मैं आपको होमवर्क देता हूं कि आपको चिंतन करना है कि कौन कौन सा समय है जब मैं मुरली की पॉइंट्स को देखती भी रहूं और याद भी करती रहूं, मनन चिंतन भी होता रहे, और कौन कौन सी टाइम है जब मैं ज्ञान के मुरली की पॉइंट्स की लेन देन कर सकती हूं, किसके साथ क्या कर सकती हूं। बाहर के लोग रहे उनको भी कह सकते हैं, उनको अलौकिक रूप से। अब जैसे आज की धारणा का सार था, आज धारणा में नहीं, आज स्लोगन था, प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो कोई मिले तो उनको बता सकते हैं, सदा खुश रहना, ये जो जीवन मिला है इसकी प्रथम क्या है, उपलब्धि है। कोई जानवर को किसी ने हंसते हुए देखा नहीं, जानवर कोई हंसते हैं, मुस्कुराते हैं उनका चेहरा इस तरह दिखाई पड़ता है, हंसते मुस्कुराते वो भी हैं लेकिन आदमी की तरह नहीं। इसलिए कहते हैं मैन इज ए लाफिंग एनिमल, आदमी जो है वो हंसता मुस्कुराता प्राणी, वो हंस सकता है। दुनिया वालों को भी वहां पर भी बहुत होता है हैप्पीनेस, उसकी इंडेक्स क्या होता है, हैप्पीनेस की सूची क्या होती है, उस पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। दुनिया में भी सब खुश रहने के लिए बड़ी ढेर सारी चीजें निकालते हैं। हमें क्या करना है, हमें लौकिक हूं या अलौकिक हूं सबको ज्ञान रतन बांटते जाना है। मुरली के पॉइंट को याद करके सुनाएं बहुत अच्छा है। उसके लिए संकल्प करें कि सवेरे सबसे पहले जिससे भी मुलाकात होगी, जब भी मेरा मुख खुलेगा तो पहले पहले ज्ञान की पॉइंट्स निकलेगी। दादी रतन मोहिनी जी कहा करते थे, कहते आप लोग कभी ज्ञान के आपस में लेन देन भी करते हो कि केवल काम 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 की बात करते हो? ज्ञान के मनन करना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। दादियों के पास कोई जाओ तो ज्ञान के अलावा कुछ था ही नहीं। मुरली का बार बार अध्ययन, बार बार मनन चिंतन, ये दादियों ने अपना वो बना लिया था। कोई भी जाए दादी के पास तो क्या होता था, दादी कुछ पॉइंट सुनाएंगी, हैं हालचाल पूछेंगी और वो ब्लेसिंग दे देंगी, टोली देंगी, दृष्टि देंगी, आपको खुश कर देंगी। तो दादियों का वरदान बड़ा काम आता रहा। तो पहला संकल्प ये ले लें, कब कब कहां कहां कैसे मुझे ज्ञान की पॉइंट्स यूज करनी। यहां पर एक भाई टोली डिपार्टमेंट में भाई हैं, बड़े भाई, तो वो मुरली के बाद तुरंत ही टोली डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे। और टोली डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, मालूम है कि अभी सब क्लास छूटेगा तो टोली लेने के लिए आएंगे। जब टोली लेने के लिए कोई आता तो कहते एक पॉइंट सुनाओ तो टोली मिलेगी। अब बेचारे भूल गए, पॉइंट याद तो है नहीं, टोली लेने के लिए पहुंच गए, अब देख रहे हैं अरे कोई पॉइंट याद नहीं। अब जिस किसी को टोली लेनी है तो मुरली के पॉइंट याद करके जाना है, है ना? तो इसलिए मुरली के पॉइंट्स को याद करें। कोई पूछे भाई जी आज का वरदान क्या है, आज का स्लोगन क्या है, तो उस समय बगल झांकने की जरूरत न पड़े, हम बता सकें। ठीक है, बाबा से प्यार है, मुरली से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, तो बाबा कहते हैं तुम मुरली को प्यार करो और मुरलीधर तुम्हें प्यार करेगा। तो पहला एक बात पक्का हो गया। ठीक है, पहली बात है ज्ञान का शक्तिशाली चिंतन मुरली, मुरली का अध्ययन, मुरली का मनन चिंतन, मुरली से अपने आप को शक्तिशाली बना ले। दूसरी बात याद कर ले, आत्म अभिमानी स्थिति बने। आत्मभिमानी स्थिति जितनी हमारी होती जाएगी उतना ही हम निर्भय बनते जाएंगे। आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और जो अशरीर बनने का अभ्यास करते रहते हैं, जो निरंतर शरीर से बाहर जाने का, शरीर में आने का, जाना और आना, जो ये चिंतन करते रहते हैं वही निश्चिंत रह पाते हैं। क्योंकि आज दुनिया में जीवन बंध का सबसे बड़ा कारण क्या है, भय। जहां भय है वही बंधन है। दुनिया में आना माना भय होना, मृत्यु का भय, हार का भय, हानि का भय, हमारी कोई हमारा अनादर न करे, बेइज्जत न करे, उसका भय होता है। भय बहुत ही बड़ा रोग है। और ये हम बाबा के बच्चे हैं जो इतना निर्भय हैं। आज दुनिया में सारी दुनिया भयभीत है, सारी दुनिया, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन बिना ईश्वरीय ज्ञान, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना राजयोग के, बिना अशरीरी बने हुए कोई भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं है। हर एक को भय होता है। और हम बच्चे, हमने देखा कई भाई बहनों को, आप में से कई भी होगा, डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर आप इंजेक्शन देने की भी जरूरत नहीं है, जो करना है करो, पीठ में ड्रिल दिया जा रहा है, ड्रिल कर रहे हैं, कैंसर हुआ है और डॉक्टर चेक कर रहे हैं, और उन्होंने कोई इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लिया ही नहीं। कितनी बड़ी ताकत है। बाबा के बच्चे बहुत बड़ी पीड़ा है। डॉक्टरों को हैरानी कि इतना कष्ट में तो व्यक्ति चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, क्या नहीं करता है। लेकिन ये तो कमाल के हैं। ये राजयोगी भाई बहनों की कमाल है। कुछ भी हो जाए, हमारे भाई हैं, अभी मैं ज्ञान सरोवर में स्वागत करके आया, नीमच के हैं सुरेंद्र भाई, वो कहते हैं हमने डॉक्टर को बोला, उन्होंने कहा है यहां पर ब्रेन में हमारे 50 ट्यूमर है और भी ट्यूमर, डॉक्टर देखते हैं कि कोई कैंसर तो नहीं है और पीठ में ड्रिल कर रहे हैं, उनका अनुभव बड़ा विचित्र है। ऐसे ऐसे भाई बहनों का कोई कष्ट नहीं, कोई बिना इंजेक्शन के एनेस्थीसिया दिए हुए उनके ऊपर हो रहा है, ऐसे आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है और आपको दर्द ना हो, शरीर से बाहर निकलने का। और जैसे कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर है, शरीर में मैं हूं ही नहीं, ये अभ्यास इसके करने की जरूरत है। मैंने भी बहुत कोशिश किया, बड़ी पीड़ा, भयानक पीड़ा, कुछ तो सेंक आ जाती है, तो लगता है कि अभी भी अवस्था वो नहीं, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है। अभी हमें मुकाम पे पहुंचना है कि कुछ भी शरीर में हमको अपनी ओर खींच ना पाए। बैठे हैं कभी कभी, मच्छर योगियों के बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन मच्छर होते हैं। हम यहां बैठे हैं और मच्छर बहुत जोर से काट रहे हैं, अब हम मच्छर भगाते जा रहे हैं, वही करेंगे तो योग में क्या करेंगे? हलचल से बिना मुक्त हुए नहीं होगा। और जब आप अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो मच्छर आके भी चला जाएगा, थोड़ी भी हलचल होगी तो उसको पता लगेगा यहां कोई बैठा है, वो भी आते रहेंगे परीक्षा लेने के लिए। इसलिए जितना जितना आप निर्भय बनते जाएंगे उतना ही प्रसन्न रह सकेंगे। जो निर्भय है, जो चिंता मुक्त है, वही प्रसन्नचित रह सकता है। और हम सब बच्चे, बाबा के बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाले, उनको किसी भी बात का भय नहीं है। कोई बात का भय बाल बच्चों का, 7 पीढ़ी का, कि क्या खाएंगे हमारे बाद? ऐसा तो नहीं है ना? सब चलने को रेडी हैं, तैयार हैं, हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाएंगे। भाई चिंता है क्या किसको? हमारे सेंटर का क्या होगा, स्टूडेंट का क्या होगा, है? कोई है चिंता? कोई नहीं। बहने तो हमारी निश्चिंत रहती है, तभी तो निश्चिंत कर देती, ठीक है? सब कुछ चिंता फिकर बाबा को सौंप दो, कोई चिंता ना हो। तीसरी बात, जो पवित्र आत्मा है, संपूर्ण पवित्रता, जिसने पवित्रता को अपना लिया है और पवित्रता से संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ चला है, वही प्रसन्न रह सकता है। अपवित्रता ही अप्रसन्न करती है और पवित्रता ही प्रसन्नता प्रदान करती है। पवित्रता, पवित्रता माना केवल ब्रह्मचारी बनना ही नहीं, पवित्रता माना निर्भय बनना, पवित्रता माना निर्संकल्प बनना, पवित्रता माना व्यर्थ से मुक्ति, पवित्रता माना निरंतर बाबा का साथ, ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी भी और ब्रह्माचारी। जिसके पास पवित्रता का शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र है, उसको संसार की कोई भी शक्ति अप्रसन्न नहीं कर सकती है। ये चेहरे पर पवित्रता की मुस्कान, यही प्रसन्नता है। और जितनी जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, उतना उतना दुनिया में भय खत्म होता जाता है, हमसे भय खत्म होता है। आज हमारी पवित्रता, जो वर्तमान जनरेशन है, दादियां आई, 350 दादियां थी, 300 से भी ज्यादा थी, भाई भी थे, वो सब आए कहां आए? शुरू शुरू में आबू में आए, मालूम में कहां आए? ब्रज कोठी में। और ब्रज कोठी के आसपास देखो तो वहां वो क्या है, शमशान घाट, चारों तरफ शमशान घाट। वहां और क्या दिखाई पड़ेंगे? भूत, प्रेत, सांप, जंगली जानवर, यही दिखाई पड़ते थे। लेकिन बहनों ने कभी भी अंगूठा बांधा नहीं, कभी यहां पर ताबीज नहीं पहना, कभी टोना टटका भूत प्रेत में गए नहीं, लेकिन ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों पवित्रता की शक्ति क्षीण हो रही है, तो लोग समझते हैं मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है, ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। होता कुछ नहीं, वो समझते हैं मेरे ऊपर कर रहे हैं और वो समझते हैं मेरे ऊपर कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो डर है वो वहम की, और उनको दिखाई पड़ता है अरे कुछ आया, अरे कुछ आया। ब्रेन जब कमजोर होता है, ब्रेन जब कमजोर होता है तो हमें गलत गलत सपने भी दिखाई पड़ते हैं, इन आंखों के सामने कुछ और दिखाई पड़ता है और लगता है वो आया, काला काला, लंबे लंबे नाखून, उल्टे उल्टे पांव, बड़े बड़े दांत। डरवा नहीं रहा हूं आपको, लेकिन बहुत लोग इसमें डरे होते हैं। इस डर से निडर होना है। जो शिव शक्तियां हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जिनके पास पवित्रता की शक्ति है, उनके पास ही कमजोर और गंदी आत्माएं आ नहीं सकती। और आज नोट कर लीजिए, मैं पूरे आज की इस क्लास के साथ पूरे ईश्वरीय परिवार को कह रहा हूं कि यदि पवित्रता के आपके पास शक्ति है तो कोई शक्ति आपको आसक्ति में नहीं ला सकती। यदि पवित्रता की शक्ति है, कोई आपके ऊपर कुछ भी कर ले, आपका कुछ नहीं कर सकती। ये नोट कर लीजिए। और जो भगवान के ज्ञान का सहारा और परमात्म शक्ति का सहयोग लिए बिना जो आगे बढ़ते करते हैं, जो टोने टटके इसमें विश्वास करते हैं, वो सबसे ज्यादा इसके वश में होते हैं, सबसे कमजोर आत्माएं हैं और वो हमेशा परेशान रहेंगे। उनसे संगम युग का सुख क्या है कुछ पता नहीं। इसलिए पवित्रता की शक्ति और उसका आधार है इस स्वमान में रहना कि मैं शिव शक्ति हूं। बोलिए ऐसे करें, सबको ऐसे करें, ऐसे करें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की अवतार हूं, मैं शांति दूत हूं। निश्चय करें, निश्चय करें, रोज सवेरे हो बाबा को नमस्ते कर लें, दूसरा स्वमान ले लें। आप चारपाई से नहीं उतर रहे हैं, बल्कि आपका अवतरण हो रहा है, अवतरित होकर के आप काम करें। रोज आना, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। कुछ आपको टिप्स देता हूं छोटे छोटे, याद कर लें। आज से नीचे नहीं जाएं, बल्कि सबको नीचे भेज दें कि जैसे एक लिफ्ट आई थी, धरती आई थी और धरती जा रही है और मैं परमधाम में। ऊपर ना जाओ, ऊपर से रोज नीचे आओ। आज का दिन मेरा उतार लिया है मैंने। ऊपर से आएंगे तो ऊपर जाना सहज होगा, ऊपर से आएंगे तो अनासक्त होना, नष्टो मोह होना, उपराम होना, साक्षी बनना, ये सब सहज होगा। नीचे से कितना भी ऊपर जाएंगे, कब तक जाएंगे? तो रोज क्या करेंगे? मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं पवित्रता के अवतार हूं। इस अभ्यास को दिन भर में 50 बार कर लें, 50 बार इस प्रकार से करेंगे तो आपके अंदर शक्तिशाली बन जाएंगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। नेक्स्ट, पवित्रता के अलावा निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ वृत्ति। जितना जितना निर्दोष दृष्टि बनती जाएगी कि कोई आत्मा का इस ड्रामा में दोष नहीं है, ना प्रकृति का दोष है, ना भाग्य का दोष है, ना किसी व्यक्ति का दोष है, ना तो दुनिया के किसी प्राणी का दोष है, ना ड्रामा का दोष है, ना भगवान का दोष है, ना भगवती का दोष है। दीदी के समय पर डॉक्टर भगवती ने दीदी का ऑपरेशन किया तो सबको मन में था कि डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन नहीं किया, तो मन में था कि भगवती ने, डॉक्टर ने ठीक ऑपरेशन नहीं किया। तो जब बाबा ने भोग में संदेश में दिया कि यह ड्रामा कल्याणकारी है, ना शरीर का दोष, ना इनका दोष, ना उनका दोष, ना भगवान का दोष, ना भगवती का दोष, जब बाबा ने ऐसा कहा, सुनते ही एकदम मैं मगन हो गया। वाह बाबा ने कितनी अच्छी युक्ति, ना भगवान का दोष और ना भगवती का दोष। तो यह ड्रामा किसी का दोष नहीं। अच्छा हुआ, जो हुआ क्यों डरे, और अच्छा ही होगा, फिकर क्यों करें। हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम यह सुनाते रहो। निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ वृत्ति, कहीं पर किसी में कोई स्वार्थ ना हो, कोई हमारी महिमा करे, कोई हमें सहयोग दे, कोई हमें समझे, कोई सम्मान दे, कोई सी अपेक्षा नहीं। जहां अपेक्षाएं रहेंगी, इच्छाएं और अपेक्षाएं, यही सबसे बड़े कमजोरी करती है। और इच्छाएं अपेक्षाएं रहेंगी, प्रसन्न आप कभी भी नहीं रह सकते। इसलिए इच्छा मात्र, इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, इस दुनिया से संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। और अंतिम एक बात नोट कर लें, ड्रामा, ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इसको मुख से नहीं बोलना है, लेकिन अपने मन में पक्का कर लेना है। कहीं ऐसा नहीं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो और बोल दो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं तो लोग डंडा पड़ लेकर पीछे पड़ जाएंगे। बल्कि अंदर में ये मन में इंट्यूशन हो, इस घटना के पीछे कल्याणकारी कल्याण है, इसके पीछे विराज। और अंतिम बात है, नोट कर लें, सदा प्रसन्न रहने के लिए, सदा निर्भय रहने के लिए, सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए परमात्मा मेरा साथी है, भगवान हमारा साथी है। इस ड्रामा में हम साक्षी हैं और भगवान हमारा साथी है। तो इस तरह से अच्छे एक पुरुषार्थ कर लें। और मेरी सात बात नोट कर लें, जल्दी जल्दी मैं दोहराता हूं। पहली बात, उठते ही नमस्ते करें बाबा से। रोज सवेरे उठते बाबा को नमस्ते कर लें, अच्छी तरह से करें। पहले नमस्ते में बाबा से संपूर्ण प्यार अपने दिल में भर लें, जो किसी इंसान के प्यार की जरूरत नहीं। दूसरा, स्वमान में कि मैं शिव शक्ति हूं। तीसरा, अमृत वेला पक्का करें रोज, रेगुलर। अमृत वेला नहीं हुआ, आप मगन मुस्कुरा नहीं सकते हैं। प्रसन्न रहने के लिए अमृत वेला पक्का करें। चौथी बात, बाबा की मुरली को अभ्यास कर लें, कंठस्थ कर लें, बार बार पढ़ें, वो जितना अध्ययन करेंगे उतना पक्का होगा। पांचवी बात, कर्मयोग करें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें। छठवां एकांत में, और सातवां सबको धन्यवाद दे दें। आप सब ऐसे बैठ जाएं, एक बार कर लें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।
प्रभु का ध्यान।